Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है एक्सपेरिमेंट्स विद राजयोगा मेडिटेशन पर। हम हर दिन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल मेडिटेशन हमें हेल्प करता है कोई भी तरह की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में। इस सफ़र पर हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, अगर आप हमें समराइज कर पाए, जैसे हमने कुछ एपिसोड में पहले डिस्कशन किया था कि राजयोगा मेडिटेशन, अगर उसको सार में रूप में आप हमें बता सके तो हमें बहुत मदद मिलेगी आगे के एप्लीकेशंस में यूज़ करने के लिए।
सी, राजयोगा मेडिटेशन बेसिकली, अगर उसकी हम एक परिभाषा देना चाहें तो राजयोगा मेडिटेशन जो है वो एक ऐसी कला कहें, ऐसा जीने का ढंग है जिसमें हम अपने आप को सत्य बना लेते हैं। सत्य, ट्रूथ, क्योंकि अगर इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इस बीइंग द ट्रूथ। राजयोगा मेडिटेशन इज नथिंग बट बीइंग द ट्रूथ। सत्य बनना ही मेडिटेशन है, राजयोगा मेडिटेशन है। लिविंग द ट्रूथ, सत्य को जीना ही राजयोगा मेडिटेशन है। एंड रियलाइजिंग द ट्रूथ, सत्य को अनुभव करते रहो जीवन में, वो ही राजयोगा मेडिटेशन है।
Okay.
मतलब ट्रुथ क्या है, पर ये क्वेश्चन क्या आता है, ट्रुथ क्या, व्हाट इज द ट्रुथ। जैसे हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। राइट, तो शिव मतलब परमात्मा जो है वो सदा सत्य है। सत्य माना वो कभी मरता नहीं, अविनाशी है, एटर्नल है
जी।
तो सत्य की जो पहली परिभाषा एटर्निटी है, सदा है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है। दूसरा है कभी चेंज नहीं होता है। राइट, दो इसकी परिभाषा। और सुंदर, सुंदर का मतलब पवित्र, शुद्ध, शिव सदा शुद्ध है, एवर प्योर है। राइट, तो ऐसे ही हमारे जीवन में शुद्ध क्या है, ये तो परमात्मा का हमने देखा
जी।
परमात्मा सदा सत्य भी है, सदा ही है, और सदा पवित्र भी है, एवर प्योर है ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर क्या प्योर है, ह्यूमन बींग के अंदर क्या प्योर है, हम क्या सोचते रहते हैं अपने को, या तो देह समझते रहते हैं जो हम चेहरे में शीशे में देखते हैं, दूसरों के दूसरे की बॉडी देखते हैं, तो इसी को हम ट्रूथ समझ लेते हैं, शरीर को ट्रूथ समझ लेते हैं, या दूसरा ट्रूथ हम समझ लेते हैं जो कि जो हमारा रोल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मेल है, फीमेल है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है
जी,
जो भी रोल सोसाइटी में हम देखते हैं ना, तो वो रोल समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति वो है, पैसे वाला है, गरीब है, मिडिल क्लास है, ये भी एक रोल है समाज में है। राइट, तो ये एक रोल, मतलब या तो बॉडी या रोल, और दोनों ही अगर इस परिभाषा से लगाएं, ट्रूथ की परिभाषा से, दोनों ही अनट्रूथ हैं।
करेक्ट,
फॉल्स है ना। बॉडी बदलती रहती है, रोल भी बदलते रहते हैं। रोल, अब मैं सपोज मैं डॉक्टर हूँ घर, हॉस्पिटल में, घर में तो डॉक्टर नहीं हूँ।
बिल्कुल,
घर में तो पिता हूँ, पति हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ।
करेक्ट,
किसी का फ्रेंड हूँ, बाहर भी देखो तो फ्रेंड हूँ, किसी दोस्त हूँ।
करेक्ट,
तो रोल तो बदल गया, घर में कुछ और, हॉस्पिटल में कुछ और, बाहर गया तो कुछ और, माँ के सामने गया तो कुछ और, पत्नी के सामने गया कुछ और, बेटे के सामने गया तो कुछ और।
एंड रियलिटी ये है कि जब हम डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं तो हमारा बिहेवियर भी अलग अलग
अलग अलग हो जाता है,
और वो जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक जो रोल हम प्ले कर रहे होते हैं उससे हम अटैच हो जाएं। क्योंकि कई बार हम जब ऑफिस में होते हैं वही बॉसी बिहेवियर हम घर में भी लेकर आ जाते हैं।
बस
जो भी एक
वो रोल लेके आ जाते हैं, बॉस, जैसे बॉस है, अगर ऑफिस में बॉस है तो हम बॉस की तरह घर में आके एक्ट करना शुरू करते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर बन के दिखाना शुरू करते हैं।
करेक्ट,
वकील है वकीलों जैसी बात शुरू कर देंगे, है ना
जी।
तो ये जो रोल हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, इससे बहुत सारी समस्याएं हो जाती है।
करेक्ट,
क्योंकि वहाँ वो रोल सूट नहीं करेगा ना। वो रोल मतलब अगर मैं अपने बच्चे के साथ या पत्नी के साथ वो रोल करूँ या माँ के साथ बॉस बन के करूँ तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना
जी।
तो ये जो है ये अनट्रूथ है, इससे सारी दुख पैदा होते हैं, क्योंकि बॉडी भी अनस्टेबल, रोल भी अनस्टेबल है, तो इसके कारण सारे जो इनसिक्योरिटी होती है, अनस्टेबिलिटी के कारण इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और अनस्टेबिलिटी से हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं, वाइसेस जिसे कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा, है ना, इनकी वजह से चिंता भय पैदा होता है, इसकी वजह से जल्दीबाजी पैदा होती है, प्रेशर्स पैदा होते हैं, इसकी वजह से जेलसी कंपैरिजन कंपटीशन होते हैं, ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है, इसी कारण से शक अनुमान पैदा होता है, इसी कारण हम दूसरों में दोष निकालते हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं ना, मैं अच्छा हूँ ये तो ऐसा है, इसमें तो ऐसा है, दोष निकालते हैं, अगर बदला लेने की भावना रख लेते हैं, इसने मुझे डैमेज किया, इसने मेरा नाम खराब कर दिया, राइट, इसी की वजह से आलस आता है, बॉडी थक गई अभी तो बहुत ना, केयरलेस हो जाते हैं, राइट, मतलब इसकी वजह से ही सारी नेगेटिविटीज आती हैं और इससे तनाव पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होती है,
करेक्ट,
तनाव होगा तो फिर हम गलत खाना खाते और फिर नींद नहीं, अच्छी नींद नहीं आती, फिर खाना खाने में खुशी ढूंढते, खुशी के लिए खाना खाते खाने के लिए जीते हैं मतलब, और इसी की वजह से एडिक्शन होते, चाय कॉफी ज्यादा पीते, स्मोकिंग करते, शराब पीते, ड्रग्स लेते, और इससे अनहेल्दी अनहैप्पी लाइफ बनती, और जब ट्रुथ को रियलाइज करते मैं कौन हूँ, इसमें क्या चीज है जो ट्रुथ है, जो मैं आत्मा हूँ, शरीर में आने से पहले भी थी वही ज्योति बिंदु थी, शरीर में हूँ तो भी ज्योति बिंदु हूँ, उतनी ही हूँ, बड़ी नहीं हूँ, शरीर था 2 किलो का बन गया 70 किलो का,
करेक्ट,
राइट, और बीमार हो जाए तो 5 किलो का हो जाएगा,
करेक्ट,
रोल आज
वो स्टेबल नहीं है,
जो पहले जूनियर डॉक्टर था फिर अभी सीनियर डॉक्टर हो गया,
बिल्कुल,
ना पहले फिजिशियन था अब कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, अलग अलग रोल बदलते जा रहे हैं ना, तो रोल कभी बदल जाते हैं
जी,
ना पहले सम्मान था, सम्मान कम हो गया, या सम्मान पहले अभी पहले नहीं था अब ज्यादा हो गया, तो बदला ना, बदला इससे इनसिक्योरिटी पैदा हुई, वी ट्राई टू होल्ड ऑन टू दोस लेबल्स, मैं बहुत सम्मानित व्यक्ति हूँ तो लेबल को होल्ड ऑन किया, उस सम्मान को मेंटेन करने में फिर इनसिक्योरिटी आएगी, कहीं मेरा नाम खराब नहीं हो जाए, तो इसकी वजह आप स्टेबल, मैंने जब आपने को आत्मा समझा तो आप स्टेबल हो गए, इससे फुल प्रूफ सिक्योरिटी आ गई
जी,
उससे आत्मा के जो 7 गुण थे, आत्मा के अंदर 7 innate qualities हैं, जैसे पानी की नेचर है ना ठंडक और आग की नेचर है गर्मी, तो जब अपने को बॉडी समझा या रोल समझा तो हमें जल्दी चिंता गुस्सा आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया, आलस आया, अलबेलापन आया, दूसरे में दोष निकाला, बदलने की भावना रखी, शक अनुमान चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष आया, और जब अपने को आत्मा समझते ही, जैसे आप झील के किनारे पहुंच गए तो क्या होगा, ठंडी हवा आने लगती,
करेक्ट,
अच्छा लगने लगता
जी,
आसपास फूल होते, फूलों के पेड़ होते, खुशबू आने लगती है ना, ऐसे होता ना
जी,
तो सेम चीज जैसे अपने को आत्मा समझा, आत्मा इटर्नल है, ट्रुथ है, बदलती नहीं है, शेप वही रहती है, फॉर्म वही रहती है, राइट, चेंज नहीं होती,
बिल्कुल,
तो वो जो इटर्निटी की फीलिंग है ना, उससे स्टेबिलिटी आती, उससे फिर जो है 7 गुण जो आत्मा के जो ना, पहली जो क्वालिटी है ना आत्मा की, जैसे हमने पहले लिया हुआ है,
हाँ
पहले समझा है,
हाँ जी,
सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है
जी,
मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, कनेक्शंस, डी फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, इसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है,
करेक्ट,
और परमात्मा इसका डायरेक्टर है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं, तो जब हम इस ABCD जिसे आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, यही है ज्ञान, यही है सत्य, ये 4 सत्य जो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे गहराई से डिस्कस किए थे, और जब सत्य को जितना हम रिवाइज करते जाते, जितना रियलाइज करते जाते, इसका जितना जीते हैं चारों चीजों को, बींग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ और रियलाइजिंग द ट्रूथ, इन 4 चीजों को जीते, उतना पवित्र हमारी मन बुद्धि पवित्र होती, जितना मन बुद्धि पवित्र होती उतना हम वर्तमान में आने लगते, भविष्य की पास्ट की चिंतन, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती, तो हम इसे शांति कहते, और प्यार जितना फिर सबको हम एक्सेप्ट करने लगते एज इट इज, जजमेंटल नहीं रहते, एक्सेप्ट करते, उसे कहते रूहानी प्यार, हाँ सबकी केयर करने लगते हैं, और जब हम सबको सबकी केयर करने लगते हैं तो हम परमात्मा के छत्र छाया के नीचे आ जाते, हम इस कॉन्शियसनेस हमारी ऊपर उठ जाती, हम अपने को परमात्मा के नजदीक महसूस करते, तो इसे कहते हैं अतिंद्रिय सुख, माना मैं अविनाशी आत्मा अविनाशी पिता की संतान हूँ
जी,
ये जो फीलिंग सदा बनी रहती इसको कहते हैं अतिंद्रिय सुख, द फीलिंग ऑफ एटर्निटी,
ओके,
दैट गॉड इज विद मी, ऑलमाइटी इज विद मी, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड इज ऑलवेज विद मी, ये जो फीलिंग है ना, दैट इज एटर्निटी, दैट इज सुपर सेंसर जॉय,
ओके,
तो जब आनंद, फिर उसके बाद आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाती, लवलीन हो जाती, उसे आनंद कहते, और उस अतिंद्रिय सुख और आनंद की फीलिंग से जो शक्तियां आती अंदर से, परखने की शक्ति आ गई, निर्णय करने की शक्ति आ गई, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति आ गई, समेटने की शक्ति आ गई, सहन सामना सहन करने की शक्ति, सहन करके संभाल लेते, दुनिया में क्या होता है सहन कर लेते डर की वजह से
जी,
और फिर समाते नहीं, अंदर अंदर उबलते रहते
जी,
स्पेशली हमारी बहनें माताएं
करेक्ट
सहन कर लेती हैं डर से, क्योंकि तो बाद में
चलता रहता है संकल्प,
संकल्प चलते रहते हैं
बिल्कुल,
फिर सामना जो जो सहन करके संभाल नहीं सकता वो सामना नहीं कर सकता, जो सहन करके संभाल लेता है वो सामने फेस कर सकता है नई प्रॉब्लम्स को, जो फेस कर सकता है वो दूसरों की मदद भी कर सकता है।
आई थिंक ये जो आपने हमें बताया मेडिटेशन के बारे में, इससे हमें क्लैरिटी तो ज़रूर मिल गई है कि मेडिटेशन कितना आवश्यक है हमारी जिंदगी में और किस तरह से हमारे गुणों को
इनकलकेट, जो एनर्जीज है ना अंदर की,
अंदर की एनर्जीज को वो अंदर से हमें इनकलकेट करने में और ज़्यादा हेल्प करता है। डॉक्टर साहब, अब मैं कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूँगी जिनका मुझे लगता है कि अगर हमें धीरे धीरे सॉल्यूशंस मिलता जाए तो उससे जो मेडिटेशन है उसे हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे। डॉक्टर साहब, कई बार आजकल देखा जा रहा है कि घरों के अंदर में एक अजीब सा वाइब्रेशन होता है, एक ऐसा वाइब्रेशन जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होने लगते हैं, बात बड़ी नहीं होती, शायद एक रिमोट कंट्रोल से शुरुआत होगी कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा घर का, शायद बच्चा कुछ और देखना चाहता है, पेरेंट्स कुछ और करना चाहते हैं, खाने में अगर देखेंगे तो खाने में क्या बनेगा, तो किसी के कुछ चॉइसेस है, किसी के कुछ चॉइसेस है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकिन इतना बड़ा रूप ले लेती हैं, तो क्या मेडिटेशन हेल्प कर सकता है वो जो लोगों के बीच का खोया हुआ प्यार है उसे वापस उजागर करने में?
बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, और प्रैक्टिकल इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। जिन घरों में पहले नरक जैसा वातावरण था
जी,
नरक शब्द का मैं जैसे अपने प्रदर्शकों को बता देना, नरक शब्द आया कहाँ से? नरक, ना अरक,
अच्छा
ना अरक, ना मीन्स नो, अरक मीन्स इसेंस,
ओके
तो जो आत्मा का इसेंस है ना वो हमारे लाइफ में नहीं, ये साथ जो मैंने अभी गुणों की बात की ना
वो नहीं है,
सत्य की समझ नहीं है जीवन में, मन बुद्धि में पवित्रता नहीं है, शांति नहीं है, पास्ट के विचार भी आ रहे हैं, भविष्य के विचार क्राउड कर रहे हैं प्रेजेंट को, रूहानी पे जजमेंटल हो गए, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये मानने वाला नहीं है, ये मानने वाली नहीं है, ये तो ऐसा ही है, मैं तो इतने सालों से देखता हूँ, इतने सालों से देखती हूँ, पिछले 30 साल से देख रही हूँ इनको, ये बदलने वाले नहीं है, मैं तो देखता हूँ, मैं तो जानता हूँ इनको, जजमेंटल प्यार नहीं, और इसी के कारण से हमारे अंदर सुख की फीलिंग नहीं है, ट्रांजिएंट हैप्पीनेस है, एक चीज मिली खुशी में मिल गई, चीज खो गई खराब हो गई दुख हो गया आनंद नहीं उदासी है,
करेक्ट,
क्योंकि हम एक दूसरे के अंदर खो जाना चाहते हैं
जी,
सोचते हैं कि वो मेरे लिए जिए, वो मेरे लिए जिए, मैं उसके लिए जीऊं, वो पॉसिबल नहीं हो, ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के जी नहीं सकते क्योंकि लिमिटेशंस हो जाती है ना बॉडी के कारण से, रोल्स के कारण लिमिटेशंस हो जाते हैं, शक्तियां अंदर होती नहीं, सहन कर नहीं सकते, समा नहीं सकते, सामना नहीं कर सकते, उसी को उससे फियर इनसिक्योरिटी पैदा होती रहती है। तो बेसिकली क्या है कि आज के समाज में अगर हम में से हर एक सत्य के साथ जीना शुरू करे, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बच्चे हो, बेटा हो, बेटी हो
जी,
घरों में जो छोटी छोटी बात पे समस्याएं कहाँ आती हैं, किसी ने कुछ डिमांड किया और मैंने क्या किया उसको, मेरी भी कुछ इच्छा है, डिमांड है, तो फिर क्या होगा, क्लैश होगा बीच में, मुझे भी चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे नहीं मुझे ये चाहिए, क्या होता है बच्चों में, क्या होता है वो कहेगा मुझे ये देखना है, सबसे बड़ा ड्राइंग रूम में क्या झगड़ा होता है टेलीविजन के ऊपर, मुझे वो एपिसोड देखना है, मुझे पिताजी कहेंगे मुझे न्यूज देखनी है, दादी बोलेगी सीरियल धार्मिक सीरियल देखना, अब टेलीविजन एक है, रिमोट एक है, सब अलग अलग देखना चाहते हैं, तो क्या करें, जो समझदार होगा ना उसको टीवी देखने से मतलब नहीं है
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट व्यू से बोलना चाहूंगी कि फैमिली के अंदर जैसे मैंने कहीं सुना था ये कि हारना सीखना चाहिए, कि जब हम अपने रिलेशनशिप्स में हारना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊपर उठ जाते हैं, जो खुद की इच्छाएं हैं उनसे ऊपर उठकर आप सामने वाले व्यक्ति को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं,
right.
जिसकी वजह से आप, बिकॉज मेडिटेशन तो हेल्प करेगा ही, मगर नॉलेज भी हेल्प करता है कई बार आपको बैलेंस रहने के लिए, क्योंकि आप उनसे उतना प्यार करते हैं इसीलिए आप उन्हें उतना इम्पोर्टेंस देंगे, और इसीलिए आप अपनी इच्छाओं को नीचे रखकर उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे. एम आई राइट?
बिल्कुल ठीक बात है. हमारे जो दादी जी थी, दादी प्रकाशमणि जी की थी, वो कहा करती थी हार्मनी, जो शब्द है ना हार्मनी, सामंजस्य हो जाना, समाज में सब इक्वल हो जाना.
जी,
झगड़ा झगड़े की जड़ जो है वो क्या है? डिजायर्स, इच्छाएं.
करेक्ट,
इच्छाएं ना, तो हमें डिजायर्स है ना. तो हार्मनी शब्द का जो मतलब ये था कि हार मानी, झगड़ा खत्म.
वाओ.
सपोज चार हैं, हम बैठे हैं ड्राइंग रूम में, उसमें से कुछ बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं हमें ये करना है, हार मानो, ठीक है बेटा आप ये देखो, आप ये कर लो, अच्छा बेटा कर लो, है ना. तो ये जो प्यार का मतलब वही बात है. फिर हम प्यार में क्या करते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं. जैसे बेटा कह रहा है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हम कहते हैं मैं बड़ा हूँ ना, मेरे को ज्यादा समझ है. आपको जीवन का अनुभव नहीं है, आपको तो आप नहीं करो ये काम. जजमेंटल नहीं होना है, ये प्यार नहीं है. प्यार है जजमेंटल ना होके उसको एक्सेप्ट करना.
okay.
और रेस्पेक्ट से एक्सेप्ट करना. एक होता है चल तू कर ले, नुकसान होगा, मेरे को मत कहना. हम लोग यूजुअली एक वार्निंग के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना. तो उससे क्या होता है, दूसरे के अंदर प्यार नहीं पैदा होता है, रेस्पेक्ट पैदा नहीं होती है. हम उसको प्यार से कहेंगे बेटा मैं बैठा हूँ, आप करो, चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ ना. देन यू दैट यू शो लाइक दिस, आई एम विद यू, कुछ गलत होगा तो मैं बैठा हूँ.
हाउ स्वीट,
दैट इज लव, राइट.
क्योंकि बच्चे इतने निडर क्यों होते हैं, उनको किस चीज का डर क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने देखा है कि उनको पता रहता है या तो मम्मी या तो डैडी मुझे देख रहे हैं, और इसीलिए जैसे अगर आप बच्चे को उछालेंगे हवा में तो वो कितना निडर होकर खुश होता है, हंसता है, क्योंकि और अगर आपको सडनली ऐसे फेंक दिया जाए या मुझे फेंक दिया जाए तो हम डर जाएंगे, लेकिन बच्चा उसको ट्रस्ट है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा. दिस इज सो ब्यूटीफुल.
तो आई थिंक ये जो है लव, मैंने लव का मतलब ये जो है, लव की सही डेफिनेशन
जी,
जो लव की हम बात करते डेफिनेशन, हम प्यार को क्या समझ लेते हैं, शरीर का हिसाब किताब समझ लेते हैं, शरीर से किसको ऐसे कर दिया, किसको ऐसे कर दिया, दैट इज नॉट लव.
करेक्ट.
लव डेफिनेशन इज अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन इन द सोसाइटी एंड वर्ल्ड.
करेक्ट.
इसकी ये बृहद परिभाषा है. तो जब हम सबको घर में अगर ऐसे संबंध को लेके चले, जजमेंटल ना हो कि हम सबको एक्सेप्ट करें एज दे आर, और आदर के साथ करें, बिना किसी शर्त के करें, तो उससे हमारे घर में प्यार पैदा होगा. और इच्छाएं, अगर इस ऐसा प्यार क्या होता है, हमारी इच्छाओं को पूरा कर देता है.
पूरा कर देता है. रियली वो कैसे?
सपोज जैसे मैंने अनकंडीशनल दिया ना, जहाँ मैं, आप जो मर्जी करो मैं तो आपके साथ हूँ, आप जैसे जैसे करो मैं आपके साथ हूँ, जो हो जैसे हो मेरे हो, राइट. जो हो जैसे हो मेरे हो. जैसे एक माँ के लिए बच्चा क्या होता है, काला है, गोरा है, बीमार है, उसको लूज मोशन हो गए हैं, बुखार है बहुत तेज, तो माँ क्या कहती है, ये कैसे बोलती है बुखार है तो मेरा नहीं है, तू लूज मोशन हो गया तो मेरा नहीं है अभी. तू जो भी है, जैसा भी है, काला भी है, तेरे को पालसी भी हो गई, कुछ भी हो गया, तू मेरा है. I'll take care of you, right?
Wow.
So that is, you know, that is love, unconditional, dignified, respectful, acceptance है उसकी, and care है. तो ये इस बच्चे को इससे, इसका जो bondage है ना, बहुत strong पैदा होती है. फिर उसमें इच्छा खत्म हो जाती है, मेरी इच्छा खत्म हो गई, अब मैं जो भी है उसकी इच्छा को पूरा करूँगा.
Wow.
Right? Isn't it? That is love. और जहाँ इच्छा खत्म हो गई वहाँ खुशी पैदा होती है, फिर ऐसा करने में खुशी पैदा होती है. मैंने उसके लिए किया तो उससे दुख नहीं हुआ, मुझे बोझ नहीं लगता है. एक माँ को रात को 12 बजे बच्चा कहता है माँ मुझे भूख लगी है, मेरे को अभी खाना है, तो माँ को रोटी रखी है रात की बनी हुई, सब्जी भी रखी है, तो माँ कहती है मैं तेरे को गरम 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 करके दे, तू खा ले. नहीं मम्मी, मेरे को तो वो आलू मटर की सब्जी खानी. अब रात को आलू मटर माँ छीलती है, करती है, खाना बनाती है, और फिर कहती चपाती गरम कर दूँ, नहीं मुझे फ्रेश खानी है. वो मम्मी आटा भिगोती है, आटा भिगो के उसकी सब्जी बना और रोटी बनाती है, और फिर मम्मी को बोलता है, फिर मम्मी कहती है ले खा ले, नहीं मुझे मुझे ऐसे नहीं खानी, तेरी गोदी में बैठ के खानी है, है ना. और जब गोदी में बैठा रहती है, अच्छा खा ले अभी खा ले, नहीं नहीं मुझे तेरे हाथ से खानी है. तो अभी क्या करेगा मम्मी, अभी उसकी इच्छा है क्या? रात के 12 बजे हुए हैं, 1 बजा हुआ है, उसको नींद आ रही है, तो भी क्या करती है, खिलाती है, उसको देखती रहती है, तू मेरा राजा है, तू तो मेरा रब, तू तो मेरा सूरज है, तू तो मेरा चांद है, नहीं तो आदर आदर से देखती है ना उसको। तो ये जो फीलिंग है ना, दैट इसमें डिजायर्स खत्म। कितनी खुशी मिलती है माँ को अपने बच्चे के लिए ऐसे खाना बना के, रात को भारी नहीं लगा, दुखी नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई, खाना बनाया। तो ये अत्यंत सुख की अनुभूति पैदा कराता है, किसको? माँ को भी, बच्चे को भी।
करेक्ट।
तो इससे खुशी आई ना। तो इससे आपस में क्या होगा, बॉन्डेज बढ़ गया, प्यार बढ़ गया, राइट? अब बच्चा भी माँ का कहना मानेगा, नहीं? ऐसा प्यार पैदा होता है, और ये ऐसा प्यार कभी भूलता नहीं।
मैंने जितना समझ पा रही हूँ आपकी बात को, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हार मानने में ही हार्मनी है। जिस तरह से आपने बात कही, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी ये बात, कि कई बार जैसे आपने मम्मी का एग्जाम्पल दिया, एक बच्चे और मम्मी का एग्जाम्पल, ऐसे घर में भी कई तरह के इश्यूज होते हैं। जैसे सपोज दो भाइयों के बीच में आजकल बंटवारे को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो इस तरह के सिचुएशंस में भी या घर में कोई भी और भी मन मुटाव जो होते हैं, उसमें भी हार मानने में ही हमारा फ़ायदा है। ये बात में आपका कितना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कभी भी एक डेस्टिनी होती है ना, डेस्टिनी ड्रामा जिसे हमने वर्ड यूज किया ना पहले
जी
मेडिटेशन में, मतलब हर आत्मा इस हिस्ट्री रूपी ड्रामा में, चाहे भाई है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जैसे
जी
हम एक दूसरे के माँ बाप या भाई बहन क्यों बने हैं, पति पत्नी क्यों बने हैं, बच्चे क्यों बने हैं, पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है ना, इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है। हिसाब किताब माना इंटरेस्ट है, ब्याज है, राइट?
ओके।
मैंने जो किया हुआ है, कोई मुझे धोखा देता है, माना मेरा भाई मुझे धोखा दे रहा, चीट कर रहा, जैसे आप बंटवारे की अपनी बात की,
बिल्कुल,
वो अगर मुझे चाहता है, मेरे से ज्यादा हिस्सा चाहता है, क्यों चाहता है? पिछले जन्म में शायद के जरूरी है, पिछले जन्म में मैं बड़ा भाई था और वो छोटा था, तो मैंने उसके साथ ऐसा किया था, है ना, तो उस इस कारण वो हक से मुझे चाहता है कि मैं कम हिस्सा लूं, वो ज्यादा ले, राइट? तो अगर हम ये ड्रामा के ज्ञान को यूज करें, इस ड्रामा में कोई भी दोषी नहीं है, चाहे दुख दिया, धोखा दिया, चीट किया, कुछ भी किया, कुछ भी मेरे साथ कर रहा है, तो मेरे अपने किए हुए कर्म ब्याज के साथ मेरे सामने आ रहे हैं, राइट? तो इसलिए हम कई कर्मों की गुहे गति को समझते नहीं है, इसलिए कोर्ट में केस करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। अगर हम समझें कि ड्रामा के अनुसार सब कुछ ठीक हो रहा है, ड्रामा अनुसार, तो इसलिए हम ये समझें कि जो कुछ हुआ है अभी तक अच्छा हुआ है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब ये समझ मुझे आ गई है, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, और जो होने वाला सबसे अच्छा होना, क्योंकि अब मेरे कर्म मैं समझ से करता हूँ, पहले मैंने ना समझे में किए हुए, उसका फल था कि मुझे दुख और धोखा मिला, अब आज शाम को जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला, कल उससे अच्छा होने वाला, परसों उससे अच्छा होने वाला, अगर हम ये समझ के चलें और निश्चिंत रहें, सिक्योर फील करें, तो आप देखेंगे हमें ना अंदर की जो फीलिंग है ना, वो बहुत अच्छी फीलिंग है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज की जो हमारी जर्नी रही है, हमने कुछ इन बातों पर रोशनी डाली, हमने ये बात को प्रूव किया कि अगर रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो कई बार हार्मनी के लिए हार मानने की ज़रूरत है। इस हार में भी हमारी ही जीत है, और जो हमारे रिश्ते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि किसी भी तरह के तूफानों में भी वो एक पिलर की तरह खड़े रहेंगे, और यही तो हमारी मंजिल है ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में मिठास लानी है, अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से ऊपर उठकर महान बनना है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर में इस जज्बे को लाने की ज़रूरत है कि अगर मैं किसी से झुक कर बात करती हूँ, अपने घर के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर या कोई भी सिचुएशंस पर, तो कहीं ना कहीं मेरी जो महानता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्मनी हार मानने में ही है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।